Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, महात्मा बुद्ध तो तप करके अपने बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके थे। एक बार जब वो कपिलवस्तु आए तो उन्हें ये जानकर दुख हुआ कि उनके चचेरे भाई जो हैं वो अपने बहुत ज्यादा भोग विलास में लगे हुए हैं और प्रजा का ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रजा भी त्राही त्राही करने लगी थी। अब महात्मा बुद्ध पहुंचे दरबार में उनसे मिलने के लिए, तो वो नृत्य गीत में मग्न थे, उन्होंने समय नहीं दिया। बाद में जब पता चला कि बुद्ध आए थे उनसे मिलने के लिए और उनका नशा उतरा, तो उन्हें लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। वो बुद्ध के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं उस समय आपसे नहीं मिल पाया। बुद्ध जी ने कहा कि तुम प्रजा का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो, तुम अपने आप में ही मस्त हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो फिर प्रजा तो बहुत दुखी हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। बात उनकी समझ में आ तो रही थी, लेकिन फिर भी शायद अंतर से वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। बुद्ध जी ने कहा कि जब तुम अच्छी तरह से इनकी सेवा करोगे तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और उन्होंने अपने तप के बल से उन्हें स्वर्ग के दीदार भी कराए। जब उन्होंने स्वर्ग को देखा, उनके चचेरे भाई ने इतना ज्यादा दैदिप्यमान, वहाँ हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें लगा कि अभी मैं जो भोग भोग रहा हूँ शायद वो तो बहुत फीका है स्वर्ग के सामने। उनका मन मचल उठा, उन्होंने कहा कि इस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तुम्हें तप भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ प्रजा की सेवा भी करनी पड़ेगी। उन्होंने दीक्षा दिया उन्हें और वो तप में लीन हो गए। बहुत दिनों के बाद जब फिर से बुद्ध वहाँ पे आए जहाँ वो तप कर रहे थे, कहा कि अब तुम्हें स्वर्ग प्रदान करने का वक्त आ गया है। तो उनके चचेरे भाई ने कहा कि नहीं, मुझे तप से ही बहुत सुख प्राप्त हो रहा है और मुझे लगता है कि ये जो सुख प्राप्त हो रहा है इसके माध्यम से मैं सेवा भी कर पाऊंगा अपनी प्रजा की, और साथ ही अपने आनंद को भी जो अंतर का प्राप्त हो रहा है उसमें भी मैं आनंदित रह पाऊंगा। इसलिए स्वर्ग तो रहने दें, अब मैं तप ही करूंगा, इसी का मैं सुख प्राप्त करूंगा। तो मित्रों, वास्तव में स्वर्ग बहुत बड़ी चीज है। वास्तव में सुख तो वहाँ है ही, लेकिन उससे पहले जो तप का सुख मिलता है वो भी बहुत गहरा है। इसे तो वही जान सकता है, जैसे कहते हैं ना कि यदि जब तक आपने आम नहीं खाया है तब तक आप उसके स्वाद की बखान कैसे कर सकते हैं। तो ये तप भी वैसी ही चीज है, जब हम करते हैं तो उसका सुकून, उसका आनंद और बहुत ज्यादा जो एक मौलाई मस्ती है उसका अनुभव हम कर पाते हैं। इसीलिए लगातार तपस्या की हमारी चर्चा भ्राता जी के साथ हो रही है। आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ प्रश्न भी आए हैं, वो भी हम भ्राता जी के सम्मुख रखेंगे। पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
शुक्रिया।
भ्राता जी, शास्त्रों में भी ये बातें बहुत आती हैं, यदा कदा जब भी वहाँ पे नजर पड़ती है तो तप करके ही लोगों ने उस सुख को, उस अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त किया है, और जब वो इस आनंद को प्राप्त करते हैं तो उन्हें सारा संसार या स्वर्ग का सुख भी फीका लगने लगता है।
क्योंकि स्वर्ग का सुख भी है तो भौतिक सुख ही, और तप का सुख, राजयोग तपस्या का सुख, प्रभु मिलन का सुख है, इसलिए इसको अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है, जो इंद्रियों से परे का है। इस संसार के सारे सुख इंद्रियों से भोगे जाते हैं, पर वो अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख है। उसको पाने के बाद ये सत्य है कि स्वर्ग के सुख फीके से लगने लगते हैं। भगवान ने भी कहा अपने महावाक्यों में, स्वर्ग के सारे सुख एक तरफ रख दो और थोड़ी देर का ये ईश्वरीय मिलन का सुख, अतीन्द्रिय सुख दूसरी तरफ रखो तो ये भारी होगा। तो ये सत्य है। तपस्या का यहाँ अर्थ है भगवान के साथ रहना। हम उसके साथ रहने का अनुभव करें, जैसे किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ रहने से कितनी सुखद फीलिंग होती है, अपने परम पिता के साथ रहने से, प्यार के सागर के साथ रहने से, जो सुखों का दाता है उसके साथ रहने से, उसके वाइब्रेशन आत्मा को परम आनंद से भरपूर कर देते हैं।
वैसे भी आजकल लोग वो प्लान देते रहते हैं कि यदि आप ये करेंगे तो किसी फिल्म एक्टर के साथ या फिल्म एक्ट्रेस के साथ आपको एक घंटे या आधे दिन बिताने का वक्त दिया जाएगा, और वो समय शायद उन लोगों के लिए पूरे जीवन भर के लिए यादगार बन जाता है। यदि भगवान के साथ हमें ऐसा समय बिताने का अवसर मिले, सचमुच ये तो बल्ले बल्ले वाली बात है।
बल्ले बल्ले क्या, स्वर्ग के सुखों से कहीं अधिक महान क्योंकि इसके अनुभव हैं हमारे पास, और एक दिन के नहीं, रोज के अनुभव हैं। वो अतींद्रिय सुख सचमुच आत्मा के जन्म जन्म के दुखों को समाप्त कर देता है। वो हमारे अंदर प्योरिटी का भाव बहुत ज्यादा उदय कर देता है, क्योंकि ये सारे सुख जो कलयुग के सुख हैं, ये इम्प्योरिटी के सुख हैं, भोग विलास के सुख हैं, और वो सुख आत्मा को प्योरीफाई करता है, विचारों को विशुद्ध कर देता है, बुद्धि को बहुत डिवाइन कर देता है। तो ये सुख सचमुच इसका बखान ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऐसी फीलिंग है, जैसे गुंगे का गुड़ कहावत है ना, गुड़ तो खा लिया पर बताए कैसे बेचारा।
तो शायद यहीं से ये बात निकली हुई है लगती है।
बिल्कुल। तो इसमें हम सभी को बहुत ध्यान देना चाहिए। और इतना ही नहीं, जब राजयोग तपस्या की ओर हम चलते हैं, तो हमारी इनर पावर्स में जो वृद्धि होती है, हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी आती है, तो एक तो अनेक समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं, दूसरा अगर कोई समस्या आती है तो बड़ी बात छोटी लगती है।
तथा जी, ये जो अतींद्रिय आनंद की बात आपने कही है, और एक बहुत बड़ी बात आपने कही है, कि एक तरफ पूरे ही स्वर्ग का सुख जिसके लिए व्यक्ति ना जाने क्या क्या करता है और कितने बखान हैं शास्त्रों में, और दूसरी तरफ थोड़ी देर का अतींद्रिय आनंद आपने कहा। तो भ्राता जी, जो विद्यालय से मैं यहाँ जो विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहन हैं उनके बारे में जानना चाहूंगा, यदि वो विद्यालय से जुड़े और यहाँ आने के बाद उन्हें परमात्मा का परिचय मिला, तो क्या उस क्षण से लेके अब तक निरंतर वो इसी अतींद्रिय आनंद में रहते हैं, या फिर इस आनंद की स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है?
देखिए, निरंतर अतींद्रिय आनंद में रहना, ये तो बहुत बड़ी साधनाओं की बात है
जी।
पर हम ये पाते हैं कि बहुत लोग यहाँ आए, उन्हें थोड़े काल का अतींद्रिय सुख मिला, व्यसन छोड़ दिए। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने शराब एक झटके से छोड़ दी, धीरे धीरे नहीं, जिन्होंने स्मोकिंग और तंबाकू और ये आजकल के जो खाने पीने की चीजें चल रही हैं, तत्काल छोड़ दी, क्योंकि आते ही अतींद्रिय सुख की फीलिंग हो गई। जैसे मैंने भी अपना अनुभव सुनाया था
जी, जी।
मुझे 14 साल की आयु में फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे मैंने योग अभ्यास किया, अतींद्रिय सुख का आभास हुआ। ब्रह्मा बाबा से जब मैं मिला तब भी उसका आभास हुआ। तो बहुत सारी चीजें नई, विशुद्ध, शक्तिशाली, अलौकिक जीवन में आ गई। तो ये बहुतों के साथ होता है, निरंतर अतींद्रिय सुख, ये बहुत बड़ी चीज है। ये कुछ श्रेष्ठ योगियों को प्राप्त होता है, लेकिन बहुतों को चलते चलते धीरे धीरे साधना करते, आज थोड़ा हुआ, कल और ज्यादा हुआ, अमृत वेले हुआ, इवनिंग के टाइम हुआ, ये सुख बढ़ने लगता है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या भ्राता जी परमात्मा देन है आपको लगता है, या इसके लिए हमें पुरुषार्थ या साधना की आवश्यकता
नहीं? इसको परमात्मा देन नहीं कहा जाएगा, ये हमारी साधनाओं पे डिपेंड करता है, कितना हम देह से डिटैच होते हैं। क्योंकि इसमें पहली शर्त है कि ये अतींद्रिय सुख उन्हीं आत्माओं को भासता है जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, यानी जो सोल कॉन्शियस होकर रहते हैं। तो जितना इस देह से हम न्यारे होकर आत्मचिंतन में, डिटैचमेंट में, बिल्कुल ये देह अलग और मैं अलग, या अपनी निराकारी स्थिति में हम रहते हैं, तो उतना उतना ज्यादा ये अतींद्रिय सुख भासता है। मुझे याद आ गई एक बात, जब हमारे यहाँ कुछ विशेष दिवस आते हैं, उसमें से एक तपस्या का बहुत सुंदर दिवस है 18 जनवरी। उस दिन बहुत सारे भाई बहने मौन व्रत का पालन करते हैं और सवेरे से ही बहुत अच्छे योग अभ्यास करते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, कम से कम 50% लोगों को सारा दिन, बहुत ज्यादा समय अतींद्रिय सुख की भासना रहती है।
मतलब ये भी एक समय अनुसार साधना के साथ साथ उन्हें ये प्राप्ति होती है, और मौन शायद इसमें एक सहायक भूमिका निभा देता है। पता जी, कुछ प्रश्न हमारे पास, जो कि लगातार हमारी तपस्या पे चर्चा हो रही है, तो कुछ मेल हमारे पास आए हैं, मैं उनकी ओर लिए चलता हूँ आपको। पहला भ्राता जी कोलकाता से आया है चिराग चक्रवर्ती का। ये कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प तपस्या के मार्ग में बहुत बाधा उत्पन्न करता है। मैं अपने मन में अच्छे विचार उत्पन्न करता हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर में व्यर्थ विचार हावी होने लगते हैं। मैं अपने व्यर्थ संकल्पों से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? शायद भ्राता जी एक बहुत बड़ा विघ्न है व्यर्थ संकल्प का आना तपस्या में।
बहुत बड़ा क्या, एकमात्र विघ्न ये है। अगर इस पर मनुष्य विजयी हो जाता है तो बाकी सब बातें बहुत छोटी छोटी प्रतीत होने लगती हैं। और ये इन चक्रवर्ती जी का ही बात नहीं, ये अनेक साधकों के साथ आजकल विशेष रूप से जो कलयुग से निकलकर साधना के पथ पर आ रहे हैं, एक साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 6 मास हुए हैं, उनके अंदर ये व्यर्थ संकल्पों का फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है और वो इनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं। ये यद्यपि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, किसी के जीवन पर पास्ट की गहरी छाप बुरी, न जाने पास्ट में क्या क्या कराए हैं, धोखा मिला है, किसी को प्यार में धोखा मिल गया, किसी ने बहुत दुख भरे दिन देखे हैं, किसी के जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स, निराशा, असफलता, इसके क्षण बहुत आए हैं। उसका एक गहरा इफेक्ट मानस पटल पर अंकित रहता है और जब वो साधना में बैठते हैं तो वो सब इमर्ज हो जाता है। अभी किसी का वर्तमान ऐसा रहा कि जीवन में बहुत अच्छी शुद्धि नहीं रही, विषय वासनाओं के पीछे ज़्यादा भागते रहे, विषय वासनाओं ने मनुष्य के ब्रेन को भी निर्बल कर दिया, मन को भी दूषित कर दिया, बौद्धिक क्षमता को भी नष्ट कर दिया है, उसके कारण व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। इसमें एक बात जानने योग्य है कि हमारे चारों ओर जो कलयुग का वातावरण है, एनवायरनमेंट्स हैं, इसमें निगेटिव एनर्जी बहुत है। एक व्यक्ति अगर अपने पर ध्यान नहीं दे तो ये जो निगेटिव एनर्जी है ये उसके मन को अफेक्ट करके निगेटिविटी की ओर ले चलती है और मनुष्य व्यर्थ का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंटरनेट, अब इंटरनेट में सारी दुनिया है उनके लैपटॉप में, वो न जाने क्या क्या देखते हैं, वो ऐसी चीज़ देखते हैं जो आत्मा की मूल नेचर के अगेंस्ट है। आत्मा यानी हमारा मन उसे स्वीकार नहीं करता तो मन विचलित हो जाता है, बहुत सारे संकल्प चलने लगते हैं। बहुत युवक और बहुत सारे लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, उसे बैड एनर्जी मिलती है, टीवी पे लगे रहते हैं उसे बैड एनर्जी मिलती है, अच्छी चीज़ें कम मिलती हैं, बुरी बातें ज़्यादा मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे कारण व्यर्थ संकल्पों के, एक बहुत सारा प्रैक्टिकल कारण जो आजकल लोगों को फेस करना पड़ता है, अपनों से बुरा व्यवहार, अपने अपनों को कष्ट दे रहे हैं, जैसे ऐसा लगता है लोगों को अपना कोई रहा नहीं, सब स्वार्थी हैं, सब एक्सपेक्टेशंस से भरे हुए हैं, किसी के मन में सच्चा प्यार नहीं है, कोई भी सहयोग नहीं देता है, सम्मान की बहुत कमी हो गई है, इसके कारण बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अभी बहुत सारे कारण हैं, हर एक के व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, वो उसके कर्म करने की कला, कार्यों की जिम्मेदारी, परिवारों का बोझ, बच्चों की चिंताएं, बच्चों के भविष्य की चिंता, ये सब मैं समझता हूँ 100 कारण तो गिनाए जा सकते हैं जो मनुष्य के व्यर्थ को बहुत बढ़ावा देते हैं। परंतु इन सब से मुक्त होने का पहले तो मनुष्य को एक संकल्प करना चाहिए कि मुझे योग की शक्ति जमा करनी है, अपना एक बहुत अच्छा स्वचिंतन का थोड़ा सा समय निश्चित करें, अब मुझे एक महान लक्ष्य की ओर चलना है, इन चिंताओं से तो मेरा काम बिगड़ रहा है, इन व्यर्थ संकल्पों से तो मेरी शक्तियां नष्ट हो रही हैं, अब मुझे अपने को सशक्त करना है ताकि मैं जीवन का भी आनंद ले सकूं और जिन बच्चों की मुझे चिंता है बिना चिंता किए मैं अपनी सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकूं। अब ऐसा स्वचिंतन हो तो अगर मनुष्य मन में दृढ़ इरादा कर ले तो अनेक व्यर्थ संकल्पों से वो सहज छूट सकता है, क्योंकि बहुत सारे व्यर्थ संकल्प उसको क्रिएट करने होते हैं। दूसरी चीज है, मनुष्य को चाहिए ज्ञान का बल, ईश्वरीय ज्ञान जिनको मिल गया है वो उसका अध्ययन करें, उससे नए नए थॉट्स उन्हें प्राप्त होंगे, अच्छे पावरफुल बहुत पॉजिटिव चिंतन उन्हें मिलेगा और इससे बहुत सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे। तीसरी चीज, बाबा के कुछ ऐसे महावाक्य हैं जो आत्मा को बहुत बल देते हैं, जैसे तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारे सारे बोझ लेने आया हूँ, लाओ अपने सारे बोझ मुझे दो, ऐसे महावाक्यों को भी याद करके भगवान को अपना साथी बना ले तो अनेक चिंताएं, अनेक बर्डन जो सिर पे गठरी रखी हुई है मनुष्य ने वो उतर जाएंगी। साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, स्वमान की प्रैक्टिस, ऐसरीरी होने की प्रैक्टिस, मैं ये कहा करता हूँ कि 10-10 मिनट भी योग अभ्यास में बैठें, कुछ अच्छे चिंतन को लिखें, तो थोड़ी सी मेहनत यदि मनुष्य 6 मास कर ले तो अनेक तरह का जो ये व्यर्थ का प्रकोप है इससे वो मुक्त हो सकता है।
बिल्कुल पता जी, ये बहुत गहरी बात आपने कही है और इन सब का अभ्यास करें, लेकिन ये सारी चीज़ें शायद कई बार व्यक्ति नहीं करता है, इसीलिए शायद ये व्यर्थ ज्यादा ज्यादा हावी होने लगते हैं। एक बात आपने कही थी बेटा जी बीच में, इसे पहले कि आगे बढ़े, आपने कहा कि जो हमारी आत्मा है उसकी नेचर अलग है, लेकिन उसके अगेंस्ट हम कार्य करते हैं, इसीलिए शायद ये व्यर्थ बहुत ज्यादा है। लेकिन मन भी तो आजकल वैसा ही करता है कि मैं ये चीज देखूं, ये चीज खाऊं, इधर जाऊं, तो ये ऐसा क्यों हो गया है? यदि मेरी मूल नेचर ऐसी है कि मैं प्योर हूँ, अच्छी हूँ, तो फिर ये बुराई की ओर मन क्यों बार बार खींच रहा है?
लंबे काल से मनुष्य भौतिकता की ओर ज्यादा अट्रैक्ट रहा है, और भौतिकता का अर्थ है कि उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस रही, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की मूल नेचर ये प्राय विस्मृत रही, उसको पता नहीं चला। उसने देखा इस चीज में बड़ा आनंद है, वो उस तरफ भाग गया। उसको ये अवेयरनेस नहीं थी कि ये आत्मा की मूल नेचर के विरुद्ध है। तो होता यही है कि जो उसकी मूल नेचर है उसके विरुद्ध जैसे मनुष्य जाएगा, भले वो थोड़ा दिन एंजॉय करे, लेकिन वो एंजॉयमेंट थोड़े ही समय में आत्मा की शक्तियों को नष्ट करेगा, उसे अशांत करेगा। मान लो आत्मा की मूल नेचर प्योरिटी है और मनुष्य सेक्सुअल लाइफ की ओर बहुत बढ़ गया, तो उसको एंजॉय तो करेगा थोड़ा दिन, लेकिन जब बीमारी आ जाएंगी, जब कष्ट होने लगेगा, जब उसने 10 बच्चे पैदा कर दिए और वो बच्चे उसके नाक में दम कर रहे हैं, तब उसे पता चलेगा कि प्योरिटी का भी कुछ बहुत बड़ा महत्व है। आत्मा की मूल नेचर शांति है। अभी एक मनुष्य क्रोध करता है, वो ये सोचता है कि काम काज कराना, मेरे पास 10 लोग काम करते हैं, क्रोध तो करना पड़ेगा, क्रोध के बिना तो ये काम करेंगे नहीं। कुछ लोगों की क्रोध करना एक आदत हो जाती है कि जरा सी बात हुई और जैसे इधर क्रोध बैठा हुआ है, नाक तक पहुंचा हुआ है, फट से उबल गए, तो ये उसको अशांत अवश्य करेगा। जब उसका क्रोध शांत होगा, उसका मन खिन्नता से भरा हुआ होगा, उसकी खुशी नष्ट होगी, उसकी एकाग्रता भंग हो जाएगी, उसका काम में मन नहीं लगेगा, और परेशान होगा, कैसे लोग आ गए मेरे पास, पता नहीं ये कहाँ से आ गए हैं, मुझे तंग करने आ गए हैं, मैं इन्हें नौकरी भी पैसा भी देता हूँ फिर भी ये काम नहीं करते, तो क्योंकि आत्मा की मूल नेचर के विरुद्ध चले गए। ऐसे आत्मा की मूल नेचर सुख स्वरूप है, लेकिन हम दूसरों को दुख देने लगे, उनसे हमें दुख मिलने लगेगा, तो आत्मा का जो ये सुख स्वरूप स्थिति है, इससे हम विपरीत चले गए, दुख बढ़ने लगेगा। तो इस पर बहुत ध्यान देना है। अब इसी चीज की बहुत जरूरत है कि हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें, अपनी मूल नेचर को पहचाने, उस नेचर को जागृत करें, तो ये सब विकार स्वतः ही छूट जाएंगे। अब देखिए ये बहुत सुंदर बात है, मूल नेचर को हम जागृत करेंगे, प्योरिटी शांति, तो जो अगेंस्ट चीज जो आज तक आई है वो समाप्त हो जाएंगे।
बिल्कुल कहता जी, इस मूल नेचर की शायद जानकारी नहीं थी, या थी भी तो शायद अवेयर नहीं थे हम। एक चीज रहता जी, कईयों के मन में ये प्रश्न उठता होगा मुझे लगता है, कि यदि ये हमारी अगेंस्ट थी तो इसमें एंजॉयमेंट का अनुभव हमें क्यों होता है फिर? यदि मान लीजिए मैं पवित्र स्वरूप ही हूँ, अब मैं विकार की ओर बढ़ रहा हूँ, अब यदि वहाँ मुझे सुख की भासना आ रही है, तो फिर मेरी ये फीलिंग तो रही नहीं ना कि हाँ मेरी ओरिजिनल नेचर कुछ और है, और जहाँ से सुख मिल रहा है वहाँ तो मैं बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा।
जैसे जैसे समय बीतता गया, सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापुर आया, आत्मा देह के कॉन्टेक्ट में रही, सदा देह में ही रहना आत्मा को, धीरे धीरे देह भान बढ़ता गया। जब हम देवता थे सतयुग में, तो ये देहभान हमारे पास बिल्कुल नहीं था, अर्थात हम पूरी तरह सोल कॉन्शियस थे। त्रेता आगे बढ़ा, आधे के बाद धीरे धीरे देह की फीलिंग बढ़ी, देवताओं में अंत तक, त्रेता के अंत तक आते आते बॉडी कॉन्शियसनेस हो गया, और इस बॉडी कॉन्शियसनेस ने उनको विकारों में डाल दिया। अभी एक बार आनंद आया तो उसकी ओर मनुष्य बढ़ने लगा, उसको शुरू में खिन्नता भी होती थी, नहीं ये गलत है, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ने के कारण इस फीलिंग के वो अधीन होता गया। तो ये सत्य है कि आत्मा की मूल नेचर पवित्र है, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण और बार बार भोग करने के कारण ये भोग की प्रवृत्ति बढ़ती गई, और मनुष्य उसको ही सच्चा सुख मान बैठा, जो ये सोल कॉन्शियसनेस का सुख था, प्योरिटी शांति सुख, जो ये आत्मा की मूल नेचर्स थी, इसको उसने पूरी तरह भुला दिया।
मतलब इधर हमें वापस आने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये द्वंद आखिर कब तक चलेगा भ्राता जी? क्योंकि अब ये जैसे आपने कहा कि लंबी एक आदत बन गई है शायद द्वापर कलयुग तक की, कि देह का भान रहा है या देह का एक जागृति रही है, तो यही चीजें हमें सुख देती रही हैं। तो बार बार ये चीजें हमें अपनी ओर खींचती हैं, तो हम मूल नेचर से बार बार उधर चले जाते हैं।
यही हो रहा है। तो अब जैसे ही ये ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है लोगों को, सारे संसार को, कुछ लोग उनमें से बाहर निकल रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भौतिकता से, इन मनोविकारों से दुखी हो चुके हैं
जी,
तृप्त भी हो चुके हैं, उन्होंने देख लिया और मान लिया इन सब में कुछ रखा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो देवकुल के हैं, जिनमें प्योरिटी के संस्कार बीज रूप में अंदर डले हुए हैं, उनके वो प्योरिटी के संस्कार उन्हें प्रेरित करते हैं कि नो, दिस इज नॉट गुड, ये तुम्हारा नहीं है, तुम तो पवित्र हो। तो कुछ आत्माएं अब सोल कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ रही हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस उनका समाप्त होता जा रहा है, विकार छूटते जा रहे हैं। और कुछ लाख लोग ही जब इस तरह तैयार हो जाएंगे तो उनके वाइब्रेशन से ये युग बदल जाएगा।
बिल्कुल। तो क्या ये सबके लिए नहीं है फिर, ऐसा मान के हम चलेंगे?
देखिए, है तो सबके लिए, लेकिन सब लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते। ये ह्यूमन नेचर है कि जिधर ज्यादा लोग चल रहे हैं, मनुष्य उधर ही चलना चाहता है, उसे ही सत्य मार्ग सोचता है। लेकिन कुछ आत्माएं संसार में स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई होती हैं, जन्म से ही उनके अंदर बीज होते हैं या पूर्व जन्मों से वो इस तरह के संस्कार लाई होती हैं, तो वो सब आत्माएं सोल कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ रही हैं और उसमें सफल हो रही हैं। ऐसे कुछ देखिए, मान लो एक व्यक्ति बहुत अच्छा सन्यासी रहा, तपस्वी रहा, उसको सांसारिक भौतिकता, ये सुख, ये क्षणिक चीजें, इनसे वैराग रहा, सोल कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ने लगती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लाखों लोग इस ओर बढ़ रहे हैं, किसी को 100% सफलता, किसी को 80, किसी को 50, किसी को भी 10, लेकिन सब बढ़ रहे हैं उस यात्रा पर और सफलता उन्हें मिलती है।
बिल्कुल, मतलब धीरे धीरे साधना करते हुए ये सारे व्यर्थ जो हैं या उसका आकर्षण है वो धीरे धीरे खत्म होगा। पता है, जैसे इन्होंने प्रश्न किया था, विशेष ऐसा क्यों होता है कि जब हम योग के लिए, साधना के लिए बैठते हैं तभी ये व्यर्थ हम पे हावी होता है? सारे दिन शायद उतना उसका प्रकोप नहीं होता है, लेकिन कई बार जब हम योग के लिए या तपस्या के लिए स्पेशली बैठते हैं, ये हावी हो जाता है और मन को बहुत विचलित करता है।
इसका एक असली कारण ये है, ध्यान से हमारे सभी दर्शक इस बात को जान लें, जब हम योग करने बैठते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं, मैं आत्मा हूँ। मन शांत होते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में जो हमने लंबा समय से भरा था वो जगने लगता है। अगर किसी ने सोल कॉन्शियसनेस का पावरफुल प्रैक्टिस नहीं की तो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड पे हावी हो जाएगा, उसमें जो भरा हुआ है वो तेजी से काम करने लगेगा और दो चार विचार उठ के मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, फिर वो प्रभावी हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे अभ्यास की जरूरत होती है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने की भी जरूरत है कि हमने उसमें क्या क्या भर लिया है। मैं एक छोटी सी विधि इसके लिए सजेस्ट करता हूँ सब लोगों को, वो सभी कर लें तो बहुत अच्छा हो। जैसे ही सवेरे आँख खुली तो सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, अंतर्मन जगा है, 108 बार शांत में बैठ कर लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विद फीलिंग मैं हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, ऑल माइटी की संतान हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है ना, तो ये वो ग्रहण करता जाएगा और जो नेगेटिविटी उसमें भरी हुई है वो खत्म होती जाएगी। ये इतना पावरफुल थॉट है कि लंबी चौड़ी नेगेटिविटी, गंदगी को नष्ट कर डालता है। ऐसे ही शाम को जब सोने का समय आया, पुनः सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो रहा है तो शांति में बैठ कर लिखें, मैं एक महान आत्मा हूँ, 108 बार विद फीलिंग मैं हूँ। ये दो चीजें अगर सब लोग करने लगे तो बहुत सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे, डर खत्म हो जाएगा, शक्तियाँ बढ़ेंगी। मैं एक चीज जोड़ दूँ इसमें, किसी को 108 ज़्यादा लगता है, 51 से शुरू करें, 10-10 रोज बढ़ाएं, ये बहुत अच्छी विधि है।
बिल्कुल। तो बता जी, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले, दो सुंदर समय आपने बता दिए हैं जबकि बहुत अच्छी तरह से हम अपनी गहराई में उतर के इन चीज़ों को जागृत करें, पॉजिटिव को। सारे दिन में भी क्या कहीं भी ऐसा हो सकता है प्रातः जी? क्योंकि दिन में भी मुझे लगता है कि जो देखने और सुनने की बात आपने कही थी कि हम इंटरनेट पे जा रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को और भी देख रहे हैं, तो शायद यहाँ से भी तो इनपुट बहुत नेगेटिव हो रहा है,
बहुत ज्यादा क्या किया जाए? बहुत ज्यादा आ रहा है, कुछ चीजों को अवॉइड किया जाए, जो चीजें हमारे व्यर्थ को बढ़ावा दे रही हैं उनसे हमें बचना चाहिए और सारा दिन कुछ ना कुछ अच्छा स्वमान का अभ्यास भी चालू रखना चाहिए।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी। बहुत सारे और प्रश्न हैं जो तपस्या से जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद ये व्यर्थ जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समाप्त करना। सुंदर प्रकाश आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी। मित्रों, तपस्या के मार्ग पे हम सब चल चुके हैं, अच्छाई के मार्ग पे या सत्य के पथ पे चल चुके हैं, और कहा जाता है, माना जाता रहा है अब तक कि जो सत्य का पथ होता है या तप का पथ होता है वो सहज नहीं होता, कांटों से भरा होता है, ऐसा हम सुना करते थे। लेकिन वो कांटों से भरा मतलब क्या, वो समझ में नहीं आया करता था। लेकिन जब अब प्रैक्टिकली हम तपस्या के पथ पे बढ़ रहे हैं या योग साधना कर रहे हैं, तो लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो व्यर्थ विचार हैं या पहले के जन्मों से या पास्ट में जो हमने भर लिया है वो सब निकल निकल के बाहर आते हैं, सफाई होती है, तो यही वास्तव में एक प्रकार से विघ्न का रूप बन जाते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं हम इन्हें जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, कई बार तो हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन हम हारे ना, क्योंकि बहुत अच्छी बात बच्चन साहब कह गए हैं, कविवर हरिवंश रॉय बच्चन जी, कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि बार बार आप यदि हार भी रहे हैं तो भी खड़े हो जाएं और आगे की ओर बढ़ें तो निश्चित रूप से ईश्वर का साथ भी मिलता है, और हर बार जब भी हम गिरते हैं तो भी जब हम उठते हैं तो एक नया अनुभव लेकर के उठते हैं। तो आप गिरे ना, ये तो हमारी शुभ भावना रहती है, लेकिन फिर भी यदि मन से कहीं हार हो रही है, मन में व्यर्थ का फोर्स बहुत आ रहा है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रकार से अंतर की सफाई हो रही है, हम स्वच्छ हो रहे हैं और ईश्वर के और ज्यादा समीप पहुंच रहे हैं। ऐसी शुभ भावना के साथ और ऐसे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। तब की इस चर्चा को आगे भी भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा और कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।